के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कुंद कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले इसे इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। आचार्य कुंद कुंद दिगंबर परंपरा में सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, ये सर्वमान्य तथ्य है। ये प्रवचन सार ग्रंथ के लिए वे स्वयं कहते हैं कि ये जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि का सार है। दिव्य ध्वनि का सार है माने उनके जिन प्रवचन का सार है। प्रवचन सार लिखा ना उसका, तो प्रवचन माने क्या, उनकी जो दिव्य ध्वनि खिली उसका नाम है प्रवचन। वचन तो सबके ही होते हैं, और जो उत्कृष्ट वचन है, प्रा उपसर्ग लगा होता है ना, तो उसका अर्थ महान हो जाता है कि महान जो उत्कृष्ट वचन है वे प्रवचन, तो वे अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि। हिंदी में जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन छपे हैं, तो उनका नाम ही दिव्य ध्वनि सार रखा है। जैसे समय सार प्रवचन है तो उनका नाम प्रवचन रत्ना कर रखा ना, ऐसे जो प्रवचन सार पर गुरुदेव श्री के प्रवचन छपे उसका नाम रखा दिव्य ध्वनि सार। माने ये हमें ख्याल में आ रहा है कि भगवान की दिव्य ध्वनि में आई हुई ये बात है। माने ये भगवान आत्मा है, 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, ये सब जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है। समय सार ज्ञायक भाव को बताने वाला, भगवान आत्मा के स्वरूप को बताने वाला, दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव आत्मा को बताने वाला ग्रंथादि राज है, क्योंकि उसमें प्रतिज्ञा की गई है कि उस ज्ञायक भाव को मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इस प्रवचन सार जो ग्रंथ है वो ज्ञान के साथ, वो ज्ञायक भाव के साथ, उस ज्ञायक भाव के ज्ञान में झलकने वाले जो गे हैं उनके स्वरूप को बताने वाला ग्रंथ है। इस प्रवचन सार नामक ग्रंथ में 3 महाधिकार हैं। पहले का नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, दूसरे का नाम है गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, और तीसरे का नाम है चरणान योग सूचक चूलिका। इन 2 को तो उन्होंने महाधिकार कहा, लेकिन तीसरे को अधिकार ही नहीं माना। महाधिकार तो बहुत दूर की बात है, उसे चूलिका कहा। चूलिका जानते किसे कहते हैं, कि जो बात इस प्रकरण में आ गई हो ना आ पाई हो, संक्षेप में आई हो और विस्तार से कहने की जरूरत हो, वो सब बातें चूलिका में कही जाती हैं। उक्तम अनुक्तम उक्तानुक्तम ऐसा लिखा है, कही हुई बात, अनकही हुई बात, और कुछ कही हुई बात, कुछ अनकही कही हुई बात जिसमें कही जाती है उसे चूलिका कहते हैं। जैसे अपन मंदिर बनवाते हैं ना, तो मंदिर की शिखर पर सबसे ऊपर शिखर और कलश होता है, तो मंदिर की तुलना में कलश क्या है, शिखर क्या है, मंदिर कितना विशाल होता है, कितना महान होता है, कितना उपयोग होता है। उसमें जिनेन्द्र भगवान विराजमान है, अपन पूजन भक्ति करते हैं, प्रवचन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सब अपने काम आता है। और ऊपर की वो सूरज क्या काम आती है, उसके ऊपर लगा हुआ कलश क्या काम आता है, झंडा क्या काम आता है, वो कितना ही बेकाम हो लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि सबसे ऊपर उसे रखा गया, सबसे ऊपर माथे पर रखने लायक है। क्या ऐसे ही ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार तो वो असली ग्रंथ है, वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है। और चरणान योग का क्या सूचक जो है उसे कहते हैं, क्या लिखा, चरणान योग सूचक चूली का, मानी कि एक सूचना देने वाली उसके ऊपर शिखा कैसी लगाई जाती है, समझे ना, वो सूचिका वो चरणान योग है। दो अधिकार उन्होंने मुख्य माने, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। इसमें एक बात और समझने की है हमको, समय सार पढ़ने से, पूज्य गुरुदेव के प्रताप से सम्यक दर्शन की महिमा इतनी अधिक आ गई है और कि हम सब लोग सोचते हैं कि किसी भी कीमत पर देह छोड़ने के पहले देह से भिन्न भगवान आत्मा हमारे ज्ञान का गेय बन जाए, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, बहुत महिमा हमारे चित्र में आ गई। और जब हम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, गेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार कहते हैं तो हमें क्या करना है इनका, हमें क्या जरूरत है ज्ञान तत्व की, हमें क्या जरूरत है गेय तत्व को जानने की, हैं? हम तो सम्मा दर्शन की बात बताओ, आत्मा की बात हो तो बताओ, हैं? अब हम इतने रूढ़ हो गए हैं कि हैं ही, क्योंकि हमने पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन सुने हैं, जिस ग्रंथ पर उनने प्रवचन किए सो हमने सुन लिए, पढ़ लिए। ईमानदारी से मैं कहता हूं, छाती पर हाथ रखकर विचार करो कि जब ये प्रवचन सार और समय सार आपने पढ़े, स्वाध्याय किया, तो नीचे हिंदी और गुजराती में जो लिखा है वो कदाचित पढ़ा भी होगा, तो ऊपर संस्कृत और प्राकृत में जो है उसकी तरफ तो आंख उठा के भी नहीं देखा। जैसे कोई पराई औरत को देखने में पाप लगता है ना, क्यों मोटा नहीं जी, लेकिन मूल आचार्यों की बात तो वो है, ये तो अनुवाद है और ये अनुवाद सब पंडितों ने किए हैं। जयचंद छाबड़ा भी पंडित थे, जो भी किए हैं वो सब पंडितों ने किए हैं, क्यों, पंडित तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। और संस्कृत प्राकृत की तरफ आप देखते ही नहीं हैं, और उसके अलावा और कोई चीज को भी ऐसी गर्दन हमने हिलाकर देखा नहीं आज तक। और भी जनवाणी है ना शास्त्र, पूज्य गुरुदेव श्री ने भी 45 ग्रंथों से तो कहते प्रवचन किए थे और कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया था, कई दफा भी अपने प्रवचन में कहते थे ना, करोड़ों ग्रंथ देखा थे। तो कभी कभी मुझे हंसी भी आती थी, करोड़ का मतलब समझते हो, अरे करोड़ों ग्रंथ हैं ही नहीं, गिनती करने बैठोगे अभय कुमार जी तो हजार गिनाना मुश्किल है। कल ना घर पर ही दफे कोशिश, बड़े से बड़े पंडित से कहो तो 150 ग्रंथ के नाम बता पाएगा। मैं उसका मतलब मैं गुरुदेव के ये नहीं कहना चाहता हूँ झूठ बोल रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने अधिकतम हैं और इस मनुष्य भव में देखे जा सकते हैं, दिन रात लगाकर वो उनने गहराई से देखे हैं, ये उसका आशा लेना चाहिए। ऐसे कोई गिनती शब्दों पर नहीं पकड़ना चाहिए, ऐसे शब्दों को पकड़ना जाएंगे तो तुम इस तत्व की बात नहीं समझ पाओगे। तो आचार्य जयसेन को लगा ये कि सम्यक दर्शन शब्द नहीं आया, तो ये मोक्षु पढ़ेंगे ही नहीं। तो उनने उनके अधिकारों के नाम बदल दिए, सम्यक ज्ञानाधिकार, सम्यक दर्शनाधिकार और सम्यक चारित्राधिकार। शरणानुयोग सूचक चूल का अगर उद्धार हो गया, मुझे चारित्राधिकार का नाम मिल गया। क्यों? और जो पहला अधिकार है उसे ज्ञानाधिकार कहा, और दूसरे को सम्यक दर्शनाधिकार। दुनिया में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रा नहीं, ऐसा स्वरूप है। पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र। लेकिन इसमें सम्यक ज्ञान पहले और सम्यक चारित्र बाद में। ये जो अपना गेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है, जो 118वीं गाथा की अपन को चर्चा करनी है, मैं वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। क्या? कि जो हमें सम्यक ज्ञानाधिकार, जो पहला नाम दिया ना ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, अब हमें तो तर्क भगवान आत्मा समझना है, हम क्या करें ज्ञान तत्व को? इन भले आदमी से कहो कि ज्ञान तत्व माने वो भगवान आत्मा ही है, हमने नाम बदल दिया तो ये भ्रमित हो गए। अभी क्या करें, इनको क्या से समझाएं? क्यों? ज्ञान तत्व माने ज्ञान है स्वभाव जिसका, ऐसा जो नौ तत्वों में सबसे पहला प्रमुख तत्व है वो ज्ञान तत्व है। जीव तत्व हुआ ना, ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व है, उसका नाम ज्ञान तत्व है। हमने हमें हमें नहीं दिए ज्ञान तत्व, ज्ञान तत्व तत्व, हमें तो बस आत्मा समझा दे। अरे भाई, हम नाम तक नहीं हमें पता है कि आत्मा को समझाने वाला अधिकार। फिर भी मैं ये बात बताना चाहता हूं कि फिर हम आत्मा खोजने लग जाएंगे उसमें है? तो ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के भी अंदर में चार अधिकार हैं। ये बहुत समझने लायक चीज है। अपन 10 मिनट में इस 118वीं गाथा में पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो। कि ज्ञान तत्व अधिकार, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में चार अधिकार हैं। ये महाधिकार और एक के अंदर चार अधिकार। पहले का नाम है शुद्धोपयोग अधिकार, दूसरे का नाम है ज्ञान तत्व अधिकार, तीसरे का नाम है सुख तत्व अधिकार, चौथे का नाम है शुभ परिणाम अधिकार। है यार, सुने कभी? स्वाध्यायियों को तो हो गई पता, लेकिन सबको जानना चाहिए। ये पहले तो ये हमें को अंदर गंभीरता से लेना चाहिए। कुछ दिनों बीच में ऐसा जमाना आया था कि जब प्रवचन सार हमारे लिए एक हे तत्व हो गया था। अभय कुमार जी, जब एक बार मैंने ये कहा कि अशुद्ध निश्चय ऐसे रागादी का कर्ता भगवान आत्मा है, तो सामने वाले बहुत बड़े विद्वान है, ये तो प्रवचन सार की बात है, वो उसका मतलब है ऐसे कहा जैसे प्रवचन सार की बात है, मैंने महा झूठी बात है। मैंने बड़ी अरुचि पूर्वक, क्यों? अरे भाई, भाग्य की बात है कि उसी आचार्य का कुंद कुंद का लिखा, उन्हीं आचार्य ने टीका लिखी, अमृतचंद ने और जयसेन ने, भाग्य जी उनने लिखी। अरे वो एक चीज हमारे लिए इतनी महिमावंत हो गई और दूसरी चीज हमारे लिए ऐसे नहीं रही। हम जिनवाणी की पूजा करें तो समय साथ रखकर करें, तो साथ में प्रवचन साथ रखा हो तो हटा देंगे, वो जिनवाणी नहीं है। फिर मैंने कहा था कि किसने कहा ये प्रवचन सार की बात है, और प्रवचन सार की बात है इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपसे किसने कहा? समय सार की बात सुनना है। आत्मा घटपट और रथ का कर्ता है, है ना, घटपट रसानी डब्बाणी। क्यों? घट जानते हो, खड़ा जो कुमार बनाता है, पट माने कपड़ा जो कोरी बनाता है, और रथ माने गाड़ी जो बड़ई बनाता है। घटपट रथानी डब्बाणी आत्मा इसका करता है, ये बात कौन से शास्त्र की है? समय सार की गाथा है, ये गाथा समय सार की है। आप क्या कह रहे हो, आप क्या कहना चाहते हो कि समय सार में ये लिखा ही नहीं कि रात का करता आत्मा है? समय सार में तो ये भी लिखा है कि कुमार ने घड़ा बनाया, कोरी ने कपड़ा बनाया दुलाहे ने, और बड़ई ने कारपेंटर ने रथ बनाया। ये समय सार में लिखा है। ये भाई समय सार में लिखने से और प्रवचन सार में लिखने से कोई बात कम और ज्यादा महत्व की नहीं हो जाती है। ये असद्भूत व्यवहार नय का कथन है, वो अशुद्ध निश्चय नय का कथन है, और इन किसी का कर्ता आत्मा नहीं है, ये परम शुद्ध निश्चय नय का कथन है। निर्मल पर्याय का कर्ता है ये, अनेक देश शुद्ध निर्मल पर्याय का कथन है, शुद्ध नय का कथन है। तो ये सब नयों के कथन, आठों ही प्रकार के जो नए हैं निश्चय व्यवहार, वो समय सार में नहीं है, प्रवचन सार में नहीं है। कहां गड़बड़ हो गई? कहीं गड़बड़ नहीं है। मैं ये बताना, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नाम के चक्कर में भ्रमित मत हो जाना। वो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जो ज्ञानाधिकार है ना दूसरा, उसमें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का वर्णन नहीं है, ज्ञान स्वभाव का वर्णन नहीं है। सम्यक ज्ञान का वर्णन नहीं है, मिथ्या ज्ञान का वर्णन नहीं है। काय का वर्णन है बता सकता है? तुम पढ़ के आए ना इस मार्ग में? नहीं पूछूंगा, तूने नहीं बता पाया तो मेरी भी इज्जत जाएगी, घबराना नहीं। अरे भाई, केवल ज्ञान का वर्णन है। समय सार में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है उसका वर्णन है, और प्रवचन सार के ज्ञानाधिकार में केवल ज्ञान का वर्णन है, और केवल ज्ञान के जाने बिना, केवल ज्ञान का स्वरूप जाने बिना ही सम्यक दर्शन नहीं होगा। सर्वज्ञता का स्वरूप ख्याल में नहीं आएगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। गुरुदेव की जो असली देन है वो वैसी छिपी रह जाएगी, कौन? तिरंबद्ध पर्याय। इस सर्वज्ञता के ज्ञान से ये सिद्ध होती है कि उन्होंने सारे लोकालोक को जाना। मोटानी जी, उनने भगवान आत्मा को जाना, इससे क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध नहीं होगी, लेकिन सारे लोकालोक को जाना इससे सिद्ध होगी। क्या? क्योंकि उसमें तो अकेला आत्मा ही क्या नक्की होगा, और इसमें तो क्रमबद्ध पर्याय तो छह द्रव्यों पर घटित होनी है, कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस निमित्त पूर्वक जैसी होनी है, उस द्रव्य की वो पर्याय उसी काल में उसी निमित्त पूर्वक वैसी ही होगी। ये तो केवल ज्ञान में झलकती है। तो सर्वज्ञता का स्वरूप जानना ये बहुत जरूरी है, और जो अश्विनी गाथा में ये बात कही कि जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत्त पज्य तेहिम सो जान दी अपाणम मोहो खलु जादि तस्य लयम। जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपने आत्मा को जानता है, और उसका मोह नाश को प्राप्त होता है। तो वहां पर जो पर्याय से जानने की बात कही, तो आत्मा को पर्याय से जानना है। फिर उन्होंने अरहंत का क्यों लगा दिया? अरहंत को द्रिविगुण पर्याय से जानते हैं, ये बात कहने के पीछे उनका क्या रहस्य है? क्योंकि अरहंत के द्रिव्य तो हमारे ही जैसा है, गुण भी हमारे ही जैसे हैं, और पर्याय में जो अंतर है, क्या उनकी पर्याय है सर्वज्ञ और हमारी पर्याय है अल्पज्ञ? तो वो कहते हैं कि सर्वज्ञ पर्याय को जानो, माने सर्वज्ञता का स्वरूप जानो, और फिर जानो अपने आत्मा को, माने हमारा भी जो पर्याय स्वभाव भी सर्वज्ञ पर्याय है। सबको जानना हमारा स्वभाव है, ये थोड़ा थोड़ा जानना ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये हमारा विभाव है। समझ में आई ना? उसमें एक टीका में एक पंक्ति लिखी है, वो क्या लिखा है? क्योंकि दोनों में समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस पर बहुत 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 व्याख्याएं हुई, मैंने उनकी पर्याय हमारे पर्याय में कोई अंतर नहीं है। तो अंतर जानना है या अंतर नहीं जानना है? मैं अब मैं कहता हूं अंतर भी जानो और अंतर नहीं है वो भी जानो। तो कैसे जानूं? कि उत्पाद वे द्रव्य, ये जो पर्याय का स्वभाव है उत्पन्न होना नष्ट होना, ये जैसा उनका स्वभाव है ऐसा ही मेरा भी है। उनकी भी पर्याय प्रति समय उत्पन्न होती है, प्रति समय नष्ट होती है, मेरी भी पर्याय प्रति समय उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, इस बात में समान है। समझिए ना, ये समानता की बात हो गई, और उनकी पर्याय सर्वज्ञ है और हमारी पर्याय अल्पज्ञ है। हमें सर्वज्ञ बनना है तो ये निर्णय करना है कि हमारा भी द्रव्य स्वभाव तो सर्वज्ञत्व है ही, लेकिन पर्याय स्वभाव भी सर्वज्ञत्व है। स्वभाव ये जो है, जो हमारी पर्याय है, ये सर्वज्ञ वो स्वभाव नहीं है हमारा है? जब भारत को आजादी का आंदोलन चलता था तो अंग्रेज लोग मालूम क्या कहते थे? गांधी जी के आंदोलन से परेशान होकर उनसे कहते थे, आप समझौता वार्ता करें। किस तरह की समझौता वार्ता करना? भारत हमारा देश है, तुम जबरदस्ती दबाकर बैठे हो तो तुम चले जाओ यहां से, पर हमारा हमें दे दो। इसमें अब बातचीत क्या करना? कि बात करना है, कि क्या बात करना? हिंदुस्तान हमारा है कि नहीं है इस पर बात करना है, है? इसमें बात करने की कोई बात ही नहीं है। बस बस तुम्हारी बात है कि तुम जा रहे हो कि नहीं जा रहे, बोलो, कितनी सी बात है। तो वो कहते थे कि ऐसा करो कि प्रांत का शासन तुम ले लो, म्युनिसिपैलिटी भी तुम बना लो, नगर निगम भी तुम बना लो, और अपने शहर की खूब तरक्की करो, और प्रांत को भी तुम ले लो, बस दिल्ली का राज हमारे हाथ में रहने दो। क्यों? क्योंकि तुम संभाल नहीं पाओगे, विदेशी मामला है, गवर्नमेंट का जे है वो है वो है। अब ऐसा है कि नेताओं को थोड़ा सा लोभ आ जाए कि भई हम अभी मुख्यमंत्री बने जाते हैं प्रांत के, और सबसे बढ़िया ठाट बाट शुरू हो जाएंगे जैसा सब होता है। तो बस लोभ में दो तीन नेताओं को, बड़े बड़े जो हैं, इनको हमने जो दो चार प्रांतों का मुख्यमंत्री बना दिया तो ये खुश होंगे, फिर भूल ही जाएंगे कि हमें भारत को पूरा आजाद करना है। कि नहीं, ये तुमको, तुम म्युनिसिपैलिटी का बनाओगे कि प्रांत का बनाओगे कि राज्य का, इस बारे में हमें कोई बात नहीं करनी है। क्यों? पूरा भारत हमारा है और तुम्हें यहां से जाना है, और तुम कब जाओगे हमें तो ये बताओगे क्या? अगर ये बात करने में क्या नहानी है कि देखिए जबरदस्ती अड़ गए, गांधी जी अड़ गए, ये अड़ गए नेहरू जी, इसमें अड़ने की क्या बात थी? अरे भाई बात कर लेते, अरे बात कर लेते तो ये हमारे मन का चोर देखना चाहते हैं। कोई के मन में यदि ये आ जाए कि मैं प्रांत का नेता बन जाऊंगा, मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो इनमें फूट पड़ जाएगी, कुछ कहने लगेंगे समझौता कर लेने में कोई हानि नहीं है, और कुछ कहने लगेंगे समझे ना, ये नीति है। ये यहां कह रहे कि हमारा वो कोई भी पर्याय हो ज्ञान की, अल्पज्ञता की पर्याय है, लेकिन हमारा स्वभाव सर्वज्ञ है, पर्याय में भी सर्वज्ञता हमारा स्वभाव है। ये 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 बात है, ये जानो। तो सर्वज्ञता का स्वरूप जानना सम्मा दर्शन की प्राप्ति के लिए उतना ही अनिवार्य है। अरे तुम कहते हो सर्वज्ञता का स्वरूप सम्मा दर्शन के लिए अनिवार्य है, ये भगवान की पूजा करने के लिए अनिवार्य है, ये मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए अनिवार्य है, ये जो तुमने मंदिर बना दिए खड़े खड़े, ये भगवान देवसास गुरु की जो तुम पूजन करते हो, उस देव का स्वरूप तुम्हारा जानने की जरूरत है कि नहीं है? हम तो ये मानते हैं कि ऐसा देते हैं, ये लेते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ की पारसनाथ ये कर देते हैं, फलाना ये कर देते हैं, ये स्वरूप नहीं है। क्या स्वरूप है? कि ये कुछ लेते देते नहीं है। हेमचंद जी साहब ने तो मेरे से आज कहा था कि दादा आप मेरी बात मानो तो ये गाथा न चलाओ, आप तो वो कलश चलाओ 102-3-4 कौन से बताए थे, कहाँ है हेमचंद जी है? क्या है भाई, तुम उसमें क्यों इसकी मांग कर रहे हो कि उसमें ये है कि कोई किसी भगवान कुछ देते नहीं, लेते नहीं, करता नहीं, धरता नहीं है? भगवान का स्वरूप जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जिनके हम दर्शन कर रहे हैं, और जिनसे 5 इंद्रिय के भोग मांग रहे, हम उनका स्वरूप जानते होते तो ऐसा मांगते कि जे हमें देंगे ही नहीं, ये मिलेंगे ही नहीं इससे, हम इस पर लड़ते कि पंचम काल में कौन से स्वर्ग तक जाते हैं, क्यों बोलो? अरे क्या करना है, हमको स्वर्ग में जाना ही नहीं है, स्वर्ग भी संसार है, इसको कौन से स्वर्ग तक जाते हैं इस पर लड़ने झगड़ने की कहां फुर्सत है? करुणा नियोग में जो लिखा है सो मान लो कि 16वें स्वर्ग तक जाते हैं तो हम खिल गए, नहीं दूसरे से ऊपर नहीं जाते हैं तो मर जा गए, क्या लेना देना है? इस संसार में कोई भी पर्याय की मांग करना ये निदान नाम का आर्ध ध्यान है, उसे मिलने जाने वाला, मांग से मिलने जाने वाला तो कुछ नहीं है, और उस आर्ध ध्यान के फल में जो नुकसान होगा वो अलग बात हो गई। हम तो यहीं से शुरू करते हैं, देखो भैया तुम शांति से हो, यदि तुम सत्याग दो, शांति से मरण करो तो तुम स्वर्ग में चले जाओगे, नहीं तो यहां वहां पड़े रहोगे, नहीं तो और ऊपर के स्वर्ग में चले जाओगे। तो हम तो समझाना यहां से शुरू करते हैं, क्या समझाना था? कि हमारे मन में इस संसार वही कि तुम प्रांत का राज्य ले लो, ऐसी बात हो गई। हम मोक्ष मार्ग के लिए चले थे, काहे काहे के निकले हम? हम आए हैं मुक्ति के मार्ग के लिए आए हैं, समय सार प्रवचन सार लिखा है मोक्ष मार्ग बताने के लिए लिखा ना, और वे वो कहते हैं कि तुम बोलो कौन सा स्वर्ग चाहिए है? क्यों तुम मांग लो, नहीं मांगोगे तो हम तुम्हें नरक भेज देंगे। दादा तेरे जैसे 36 देखे हैं, तू भेज देगा हमें? आज तक कोई जीव नरक गया है तो किसी का भेजा हुआ गया है या अपने परिणामों से गया है, अपने क्रमबद्ध से गया है? तो हम कह रहे हैं तो मांग लो, मूर्ख तेरे पास है क्या हमें देने को जो तेरे से मांग ले? हैं? आप समझ रहे हैं? है क्या, एक दिन में दूसरे दिन को कोई ले ही दे नहीं सकता है। केवली के ज्ञान में जो झलक गया है निश्चित रूप से वही गारंटी से होने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस सर्वज्ञते के स्वरूप जानने का की महिमा है। इसलिए ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के सम्यक ज्ञानाधिकार में, ज्ञानाधिकार में क्या बताया है, सर्वज्ञता का स्वरूप बताया है। उसके बिना हमारा धर्म का एक कदम शुरू नहीं होता। ये कम जरूरी बात है, सर्वज्ञता का स्वरूप समझना कम जरूरी बात है मालूम। प्रवचन सारी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मंगलाचरण में 5 गाथाएं लिखी, समय सारे में तो एक ही में निपटा दिया है ना, और वो भी आधी में ही। वंदित तु शब्द सिद्धे धुम चल मड़ो वयम गयम पत्ते, बस खत्म। अब दूसरी पंक्ति में तो बोच्छामी समय पाहुड़, मैं समय सार बताता हूँ, प्रतिज्ञा कर ली। एक लाइन में भगवान को याद करके छुट्टी करो। और प्रवचन सार में 5 गाथा है। भगवान महावीर को याद किया, फिर विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों को याद किया, फिर प्रत्येक को अलग अलग, और प्रत्येक को अलग अलग, और प्रत्येक को एक साथ, और फिर यहाँ के वहां के यहाँ के सब चारों तरफ के देख देख करके नमस्कार करके, और फिर अंतम कहा मैं सम्मम, मैं साम्य भाव को प्राप्त होता। तो उन्होंने टीका में क्या लगा, साम्य भाव के आश्रम को प्राप्त होता। ऊपर तो क्या है, उपसम्यामी सम्मम जत्तो निर्माण संपत्ति, मैं उस साम्य भाव को प्राप्त होता हूं जिससे निर्माण की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये साम्य भाव क्या है, तो नीचे टीका में साम्य भाव रूपी आश्रम को प्राप्त होता हूं, तो समझे कुंद कुंद का भी कोई आश्रम होगा, बहुत बढ़िया आश्रम होगा। क्यों सर, सबके आश्रम होते हैं, शंकराचार्य का था, उनका था, उनका था, उनका था, हमारा भगवान आचार्य का कैसे कोई आश्रम नहीं होगा, होगा ही ना। अरे भाई के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी आश्रम है, उस आश्रम को मैं प्राप्त होता हूं। तो उन्होंने कहा क्या है कि वो शुद्धोपयोग रूप है। तो क्या शुद्धोपयोग, ये शुद्धोपयोग क्या होता है, तो निशुद्धोपयोग का स्वरूप बता दिया 12 अधिकारों में, पर शुद्धोपयोग अधिकार पहले में। फिर क्या शुद्धोपयोग करेंगे तो होगा क्या, क्योंकि ये हम तो बिना ये जाने कि इस काम धंधे को करने से हमें क्या लाभ होगा, हमने आज तक कोई काम किया ही नहीं, हम तो बनिया हैं, पहले हमें ये पता लगना चाहिए कि इसमें मिलेगा क्या। तो उनने कहा उसमें कि तुमको ज्ञान और सुख मिलेगा। क्या, ज्ञान और सुख मिलेगा, ज्ञानानंद स्वभाव होता है ना, ज्ञान और सुख मिलेगा। तो कैसा ज्ञान मिलेगा, हमें ज्ञान तो है ही और सुख भी है, हम अभी अज्ञान तो है नहीं, जो भी हम जानते हैं ज्ञान तो है के पास है ना, और सुख भी है थोड़ा बहुत, 5 इंद्रियों का जैसा भी जो कुछ है, हैं? कि नहीं बेटा ऐसा नहीं। तो फिर ज्ञान अधिकार को कैसा ज्ञान मिलेगा, इसलिए उनने कहा सर्वज्ञ वाला ज्ञान। वो सर्वज्ञता की बात कैसे आ गई, कि वो शुद्धोपयोग करेंगे तो तुम्हें तुम कहोगे हम शुभ भाव करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यही कहते ना स्वर्ग मिलेगा, यही कहते ना। तो फिर स्वर्ग कैसे है, तो कम से कम एक देव के 32 देवांगनाएं तो है ही है, उसका वैभव जी, ऐसा शोक बीमारी नहीं है, जे नहीं है, वो नहीं है, बहुत बढ़िया सुंदर शरीर है, जे है वो है, क्यों ये बातें शुरू होती हैं। तो उनने कहा कैसा ज्ञान मिलेगा, तो ऐसे में वो ज्ञान का स्वरूप बताने वाला पूरा अधिकार, तो सर्वज्ञता का स्वरूप बताना, ये बेकार है, ये जानना जरूरी नहीं है, ये मुक्ति के मार्ग में उपयोगी नहीं है, ये कुंद कुंद की वाणी नहीं है, ये अमरचंद की वाणी नहीं है, ये कांजी स्वामी की वाणी नहीं है, ये पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें नहीं बताया, अकेला समय सार समझाया था। उनने भरी सभा में ये प्रवचन किए थे कि नहीं किए थे? नहीं साहब, समय सार पे 19 बार किए थे, एक दफे तो किए थे ना, क्यों? मेरे कहने का मतलब इसमें भेद करने से कोई फायदा नहीं, और ऐसा भी मैं नहीं करना चाहता हूं कि तुम समय सार महान है, प्रवचन सार कुछ नहीं कुछ नहीं, तो मैं कहने लग जाऊं प्रवचन सार महान है समय सार कुछ नहीं। ये तो ऐसा ही हो जाएगा ना, तेरे गुरु जी के तो चेले थे और गुरु जी की सेवा करने के लिए उनने दोनों गुरु जी को आधा आधा बांट लिया था कि इस हिस्से की सेवा तू करना, इस हिस्से की सेवा मैं करूंगा, ये हाथ तू दबाना, ये हाथ मैं दबाऊंगा, ये टांग तू दबाना, ये टांग मैं दबाऊंगा, ये इसको मैं नहलाऊंगा। एक ने अपना पैर को अच्छी तरह से धो के नहा करके साफ करके उससे पोंछ कर और अभी देखा जमीन पर रखता हूं तो ये थोड़ा गंदा हो जाएगा, तो सूख जाए तो फिर जमीन पर रखूं, तो उसने दूसरे पैर पर रख दिया। क्या दूसरा आया, मेरा पैर गंदा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू अपने पैर को मेरे पैर पर रखेगा, अब ये पैर गुरुजी के नहीं रहे। क्यों? अब ये सोनगढ़ गुरुजी का नहीं रहा, ये देवलाली गुरुजी की नहीं रही, ये देवपुर गुरुजी का नहीं रहा, ये सब हमारा तुम्हारा हो गया, अब हम क्या दुर्दशा करेंगे उसकी? तो वो एकदम एक भूसल लाया और उसने वो टांग तोड़ दी। तो उसे पहले वाले को गुस्सा आया तो उसने दूसरी टांग तोड़ दी, दोनों टांगे टूट जाएंगी, अब हमने समय साहब प्रचार में झगड़ा शुरू कर दिया। क्यों? अरे एक आचार्य एक टीकाकार, क्यों दोनों की महानता खोजो। अब वो ही तरकारी भगवान आत्मा की बात प्रचन सार में नहीं है, ऐसी तो मैं नहीं कहता, कम होगी, लेकिन वो ही कहते तो फिर दो क्यों होते, फिर तो एक ही होता। फिर दूसरी बात समझानी थी तो प्रचन सार लगा प्रचन दूसरी, पर जब दो चीजें लिखी जाएंगी तो दो के विषय वस्तु तो अलग होगी होगी ना। इसमें इसमें महान और गैर महान का क्या सवाल है? फिर उसने कहा कि ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा तो क्या मिलेगा कि अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, तो फिर सुखाधिकार में अतीन्द्रिय सुख का स्वरूप बताया। जो इंद्रिय सुख तुम जैसे सुख मानते हो वो वास्तव में सुख है ही नहीं, अतीन्द्रिय सुख क्या है उसका स्वरूप बताया। इतने में एक बोल पड़ा कि ये तो ठीक है, लेकिन वो एक और दुनिया में इंद्रियों वाला सुख भी तो होता है ना। जहां होता है तो हमें तो वही चाहिए, हमें तुम्हारा ये सुख नहीं चाहिए, तुम तो हमें ये बताओ कि वो कैसे मिलेगा। अच्छा वो भी बता देते हैं, तो इसलिए फिर उनने शुभ परिणाम आदि काल लेगा। तो सुनना कि तुमको हम नहीं बताएंगे तो बेटा तुम्हारा मन मानेगा नहीं, फिर तुम दूसरे गुरुजी खोजोगे, फिर उनसे समझोगे, फिर वे न मालूम तुम्हें कहां ले जाएंगे, तो तुम ये भी समझ लो हमसे ही कौन सा कि वो इंद्रिय सुख है, वो तुम उसी की बात कर रहे ना जो चक्रवर्तियों को होता है 96,000 पत्नियों वाला, वो पत्नी वाले सुख की बात कर रहे ना तुम, वो रुपया पैसे वाले हाथी घोड़े वाले सुख की बात कर रहे ना तुम, कि हाँ हाँ उसी की बात कर रहे हैं, चक्रवर्तियों की इंद्रों की नगेंद्रों की, तो उनकी क्या हालत है, तो उनके सुख का वर्णन तो नहीं किया, वे कितने दुखी हैं, ये बात कहीं सिद्ध की है तो ये प्रवचन सार ग्रंथ है। बोलो किसी भी शास्त्र में स्वर्गों का वर्णन आएगा अभय कुमार जी, तो इतने राजा, इतनी रानियां, इतने देवांगना, ऐसा काम, इतने हजार वर्ष बाद हम गले से ही हमें झर जाए, तो भोगों की ही बात करेंगे। चक्रवर्तियों की इतनी रानियां, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने गांव, क्यों? चक्रवर्तियों के सुख का वर्णन करेंगे, इंद्रों के सुख का वर्णन करेंगे, और ये कहते हैं कि ये अनंत दुखी हैं। कि कैसे जाना तुमने कि ये दुखी हैं? अरे एक आदमी दवाइयों के बक्से रखे हैं, चार डॉक्टर बगल में खड़े हैं, तो ये उसके निरोगी होने की निशानी है क्या, रोगी होने की? इतनी दवाइयां अकेले आप रोजाना खाते हैं, वो मेरे सीसी देखते हैं, अभी मेरी जेब में नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। क्या इतनी दादा, इतनी दवाइयां आप सुबह से शाम तक खाते हैं? हाँ भैया खाते हैं। अब मुझे दुख कैसे हो सकता, इतनी दवाइयां खाता हूं, इतनी दवाइयां, मैं कितना बीमार हूं इस बात की निशानी है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, इस बात की निशानी है, बता है? तो इतनी भोग सामग्री ये उनके दुखी की होने की निशानी है। दुख के बिना विषय में व्यापार हो सकता नहीं। 64वीं गाथा में ये लिखा, दुख के बिना विषय में, पांच इंद्रियों के विषय में व्यापार नहीं हो सकता। अभी पांच इंद्रियों के विषय में व्यापार हमको देखा जा रहा है, तो उस पूरे सुखाधिकार में जो इंद्रिय सुखाधिकार था, जिसको सुख परिणामाधिकार कहा था, हम समझ रहे थे इस अब तो सुख परिणाम के गीत गाएंगे, अब तो पुण्य की महिमा बताएंगे, अब तो संसार के सुख का वर्णन करेंगे, उनका हो गया बहुत। लेकिन उनने तो एक लाइन में भी उसको सुख माना ही नहीं, ये अनंत दुख है, दुख है, दुख है, दुख है, यही वर्णन किया। पर अंत में तो यहां तक लिख दिया कि तुम ये नहीं मानोगे तो समझ लो कि तुम्हारे संसार सागर का किनारा अभी बहुत दूर है। शब्द मूल शब्द लिखा महादुख संकट निकट है तुम्हारी, तुम निगोद में जाने वाली हो। पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात है, संसार सागर में ब्रह्म मद मोह से आछन्न वे। अब ये कहते कहते फिर उन्होंने वो जो जानदी अरहंतम रिब्बत गुणत पज्यते ही ये गाथा भी भाग्य की देखो तो बात सुख परिणाम अधिकार की है। कहीं थोड़ा बहुत समर्थन किया था सुख परिणाम का? बोलो अध्यात्म बता सकते हो? कौन बता सकता है? हाथ उठाओ, पूछूंगा नहीं, बस सिर्फ जानना चाहता हूं कोई कोई है जानने के लिए। अरे भाई इसी अधिकार में ये कहा है कि इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, कहा कि नहीं कहा? तो ये शुभ परिणाम, स्वाध्याय करना ये भी शुभ परिणाम है, इससे बढ़िया कोई शुभ परिणाम नहीं है जो तुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में निमित्त कदाचित बन सकता है। जो 86वीं गाथा है ना, जे तत्वार्थ से जो जानते निज क्या है? ऐसा है ना, उनको इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, ऐसी पंक्ति है। अभी ये पढ़ने के बाद फिर वो कहते हैं कि जिस चीज को जानने से, माने अब जो हमने एक ज्ञान का स्वभाव बताया ना, तो लोकालोक को जाने, तो वो गे तत्व प्रज्ञापन कहा, वो सम्मदर्शन अधिकार, यानी एक वस्तु का स्वरूप बताया है हमने, जिसमें इस वस्तु का स्वरूप समझे बिना किसी को भी समय दर्शन नहीं होगा। ये बातें आपने बहुत सुनी होंगी, कि दुनिया को जानने से कोई लेना देना नहीं है, हम तुम अपने आत्मा को जानो, बस अकेले अपने आत्मा को जानो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सुने क्या नहीं सुनी? अब मैं ज्यादा नहीं उलझना चाहता हूं इसमें, फिर अब बात तो हम बहुत आगे बढ़ गए, जानो नहीं जानोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, यहीं तक नहीं रुकी। फिर जानते ही नहीं है, जानने की जरूरत ही नहीं है, और न मालूम कितने कितने आगे हम बढ़ गए। वो तो ये कहते हैं कि ये जानने की जरूरत है, नहीं तो ये तत्व प्रज्ञापन काय को लिखा, ये उत्पाद वै ध्रुव से युक्त आत्मा होता है, ये जो बात लिखी है ये छह ही द्रव्यों का स्वरूप है ना, क्या चले जीव का द्रव्य सामान्य अधिकार और द्रव्य विशेष अधिकार, ये जो वर्णन है, ये वर्णन, ये जो अपनी गाथा है, वो द्रव्य सामान्य अधिकार के अंतर्गत गाथा है 118वीं में, इसमें वो भी 114वीं गाथा है कि द्रव्यार्थिक नय की चक्षु को सर्वथा बंद करके खुली हुई पर्यार्थिक नय की चक्षु से देखो तो हैं पर्याय ही दिखाई देती है, और पर्यार्थिक नय की चक्षु को सर्वथा बंद कर द्रव्यार्थिक नय की चक्षु से देखो तो तुम्हारे वस्तु के स्वरूप को देखने की दो आंखें हैं, और उन दो आंखों से हमें देखना चाहिए। कौन सी दो आंखें? ये नहीं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय, ये दो आंखें हैं, इन दो आंखों से हमको वो वस्तु को देखना चाहिए, है ना, इस शब्द में गाथा में। अब उसी का वर्णन चल रहा है, वर्णन करते करते अब अपन 17वीं गाथा तक कल हुई थी, और अब ये आज 118वीं गाथा अपन चलाते हैं। ये अपना चलता आ रहा है, पहले अपन ने समय सार पहली गाथा से बिल्कुल अंतिम गाथा तक पूरा किया, जो आजकल टीवी पे आ रहा है ना, आप देखते होंगे सुबह है? अब बहुत लोग देखने लग गए हैं भगवान जी, मेरा जो कार्डियोलॉजिस्ट है ना, वो देख रहा थी, मैं गया तो मेरे बोलता सुबह आपके रोजाना दर्शन हो जाते हैं, ये क्या बात कर रहे हो? बोले मैं टीवी पर देखता हूँ जनवाणी पर। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, तो उस डॉक्टर के पास मैं कई वर्षों से जाता था, तो मुझे देखता था बहुत प्रेम से सब बात, लेकिन कभी कुर्सी पर से उठकर मुझे भेजने दरवाजे तक नहीं आया, कभी जिंदगी में। और अब जब उसने टीवी पे मेरे प्रश्न सुने, तो अभी मैं परसों नरसों जाके आया, तो डॉक्टर उठ के मरीजों को छोड़कर मेरे साथ बाहर तक आया, जब तक मैं गाड़ी में बैठ नहीं गया, मेरी गाड़ी नहीं रवाना हो गई, तब तक खड़ा रहा। क्या ऐसे कई केस मेरे सामने आए, तो मुझे विचार आया कि इतनी इतनी लोगों को लाभ होता, ये कभी सोच नहीं सकते थे, उसे कभी फुर्सत नहीं मिल सकती थी कि वो मेरा प्रवचन सुनने के लिए आए। उसकी मां रोजीना सुनती थी, और वो कहती होगी बेटा 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 हैं, तो मेरे पास तो वो इलाज कराने आते हैं, तो इलाज कराने आते हैं, तुम प्रवचन तो सुन, और जब जची तो सुना तो एक असर पड़ता। कितना कितनी कितनी बात है, और हमको पता ही नहीं चलता। अरे भाई, ये जो सम्यक दर्शन की जो बात है, ये जो जो क्या लिखा है इसमें, कितना क्या टाइम हो गया? मेरे ख्याल से हो गया है, 10 मिनट और हैं, ठीक है चलो। विगत गाथा में यह कहा है कि कर्म जीव के स्वभाव का पराभव करके मनुष्यादि पर्यायों को उत्पन्न करते हैं। अब इस गाथा में यह स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्यादि पर्यायों में जीव के स्वभाव का पराभव कैसे होता है। गाथा यह है, नर नारे तिरे सुरा जीवा खलु नाम कम्मने वित्ता रहिते लद्य स्वभावा परिणम माणा सकम मानी नाम नामक में के पशु रख सुर नर गति में कार में परणत जीव को आचार्य देव ने दो उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट किया है। जिस प्रकार कनकबद्ध माणिक के कंगनों में माणिक के स्वभाव का पराभव नहीं होता, ये क्या कह रहे हैं, माणिक जो होता है ना हीरा माणिक क्या होता है, उसको सोने में जड़ दो, अंगूठी बना लो, तो हीरा अलग चमकता रहता, माणिक अलग चमकता रहता है और सोना अलग चमकता रहता है। ना तो माणिक गायब होता है ना सोना गायब होता है, माने दोनों के स्वभाव का पराभव नहीं होता। ये तो पराभव नहीं होने के उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या दिया कि एक निर्मल जल, बिल्कुल पवित्र निर्मल जल, पर वो बह करके जंगल में चला गया, तो नीम के पेड़ में गया, चंदन के पेड़ में गया, तो उसने अपनी गंध छोड़ दी, सुगंधी आ गई। नीम के में गया तो अपना रस छोड़ दिया और कड़वा हो गया, क्यों, गंध भी छोड़ दी रस भी छोड़ दिया। तो अब कहते हैं कि वो जो आत्मा है जो रागादि रूप परिणमित हुआ है, तो वो माणिक जैसा है कि उसे पानी जैसा है, जो क्या कोई समझ नहीं आ रहा। माणिक में तो सोने में जड़ दिया तो सोना अलग चमक रहा है और माणिक अलग चमक रहा है, और उसमें वो पानी जो है वो पानी नहीं रहा, ना तो मीठा रहा ना अपनी गंध रही, गंध भी खो गई स्वाद भी खो गया और उसका प्रवाहीपना भी खो गया। प्रवाहीपना माना बहने का स्वभाव, वो बहके यहां आया था ना बगीचा में, अब वो आगे बहना बंद हो गया, अब नीम के पेड़ में रह गया, चंदन के पेड़ में रह गया। तीन नुकसान किए उसने, किसने, पानी ने। तो कहते ऐसे ही भगवान आत्मा को कर्म ने नहीं बांधा, शरीर ने नहीं बांधा, नहीं तो कर्म बने रहते, शरीर रहता और आत्मा अलग चमकता माणिक जैसा, लेकिन ये अपने स्वभाव का अभाव करके और ये बहकर दूसरे में चढ़ गया, राग देश मोह में चढ़ के और पर को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, तो इस मान्यता के कारण और उसके प्रति राग के कारण इसने अपना स्वभाव भी छोड़ दिया और विभाव में चला गया। माणिक का उदाहरण किस पे घटाए अब, कि माणिक ने पराभव, माणिक का पराभव नहीं हुआ देह में, तो वो कहते हैं अरंत भगवान है, तो देह में है कि नहीं, लेकिन अरंत भगवान अलग चमक रहे अपने स्वभाव से और देह अलग दिखाई दे रही, एक ने दूसरे का पराभव नहीं किया। लेकिन इस पानी ने, क्योंकि ये उस रूप परिणमित हो गई, इसने अपना स्वभाव छोड़ दिया, माणिक ने अपना कुछ नहीं छोड़ा, सोने ने भी कुछ नहीं छोड़ा, माणिक सोने में मिला नहीं, सोना माणिक में मिला नहीं, तो वो सुरक्षित रहे। और अनंत भगवान का आत्मा सिद्ध तो सिद्ध भगवान का तो नहीं कह सकते, क्योंकि वहां तो शरीर ही नहीं है, ये शरीर में रहता हुआ आत्मा अपने केवल ज्ञान से अलग चमक रहा है और उसका शरीर बजवे सब नारायण सनन वाला परमोदारक देह में अलग चमक रहा है, लेकिन ये संसार में रखने वाला जीव वो माणिक जैसा नहीं है, बल्कि उस पानी जैसा है जिसने अपना प्रवाहीपन छोड़कर बहकर से पेड़ों की बगीचे में शरण में गया, शरण में गया तो अपना प्रवाहीपन खत्म हो गया, वहीं कैद हो गया, अब जिंदगी भर अपने उसी में रहेगा ना, पेड़ में ही बन के रह जाएगा और उसको गंध भी कोई पानी है या कोई जानेगा भी नहीं, उसका स्वाद को भी कोई जानेगा भी नहीं। इसके पानीपन का अस्तित्व ही जैसे खतरे में हो गया हो, ऐसा ही ये भगवान आत्मा पर पदार्थ में एकत्व ममत्व करके मानव अपने स्वभाव का पराभव कर देता है। तो मनुष्य आदि पर्याय में जाने वाला आत्मा राग देश मोह पैदा करके अपने स्वभाव का पराभव कर देता है, और जो आत्मा उसे भिन्न जानता रहता है और अपने आत्मा को भिन्न जानता रहता है वो अपने स्वभाव का पराभव नहीं करता है, तो कालांतर में अनंत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ये 118वीं गाथा का अर्थ है। 9:15 हो गए हैं, 8:15 अपन ने शुरू किया था, बाकी कल है।